रिस्क लिल इबाद, ये बंदों के लिए रिस्क है। देखिए इंसान के सर्वाइवल के लिए खाना पीना जरूरी है, और अल्लाह ताला ने उसके रिस्क का इंतजाम किया है। यहां से पता चला कि खाना पीना भी रिस्क है, बारिश भी रिस्क है। वअहयैना बिही बल्दत मैता, और जिंदा किया हमने इसके साथ मुर्दा जमीन को। किसके साथ? पीछे की तरफ जाए, मा अम मुबारकन, इस पानी के साथ हमने खुश्क जमीन को, बंजर जमीन को जिंदा कर दिया। यानी जमीन हरी भरी हो गई, सरसब्ज हो गई। जमीन में से आप देखते हैं, बल्कि यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी बहुत होती है, लेकिन आप सऊदी अरब में चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट टाइप होता है ना, तो आप देखते हैं सुभान अल्लाह के बिल्कुल ब्राउन पहाड़ होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ग्रीन हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, इस बारिश से अल्लाह ताला उस जमीन को फरमा रहा है जैसे वो डेड थी वो जिंदा हो गई। कदालिकल खुरूज, इसी तरह निकलना है, यानी तुम्हारा निकलना भी ऐसे ही होगा, तुम भी इसी तरह जमीन से निकलोगे जैसे ये अब इसमें से हरियाली सब्जा निकल आया। अब आगे मुख्तसरन सिर्फ नाम लेके पिछली कौमों का जिक्र किया गया है कि देखो उनसे ही सबक लो, वो कहाँ चले गए जब उन्होंने झुठलाया इन बातों को, ना अपने नबी को माना जो उनके जमाने में आए, उनको झुठलाया, उनकी मुखालफत की, उनकी बातों की मुखालफत की, उनको भी इसी तरह कहा कि ऐसे कैसे उठाना होगा और ऐसे कैसे होगा, और उनके ऊपर एतराजात किए। तो देखो कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, देखो झुठलाया कौम नूह ने भी। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि कुरैश झुठला रहे थे, और लास्ट टाइम भी नहीं है। ऐसे लोग कयामत तक आते रहेंगे जो झुठलाते रहेंगे पैगंबर की बातों को, पैगंबर की बातों को बी लिटिल करेंगे, और उनकी बातों को कुछ नहीं समझेंगे और अपनी बात को उनसे ऊपर समझेंगे। ऐसे लोग आते रहेंगे, तो इतने हैरान होने की जरूरत नहीं होती कि, और इतने मुतासिर भी होने की जरूरत नहीं होती कि देखो वो भी कह रहा है, वो भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानता। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, अपनी अकलों को वो बहुत बड़ा समझते थे, बड़े बड़े सरदारों ने नहीं माना। तो इतनी परेशान ना हो इस बात पे, किसी का ना मानना हमें मुतासिर नहीं करना चाहिए कि हम परेशान हो गए और हम भी इससे जरा मुतासिर हो रहे हैं कि अच्छा अच्छा वो भी नहीं मानते और वो भी नहीं मानते, और देखो उन्होंने भी ऐसा कह दिया और वो तो ये कह रहे थे। तो पहली कौमों ने झुठलाया, कौम नूह ने, फिर देखो उनका अंजाम क्या हुआ। यहाँ पे कुरैश मक्का को भी एक धमकी के तौर पे बताया जा रहा है, देखो अगर तुम भी नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा भी ऐसे ही अंजाम होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली भी है इसमें कि पिछली कौमें भी आई, देखो अल्लाह ताला ने उन कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया जिन्होंने मुखालफत की थी। फिर असहाबे रस कौन थे? रस कहते हैं कुएं को, जो जिसको कहते हैं ना कच्चा कुआं, जिसकी मुंडेर ना बनाई गई हो, पक्का ना किया गया, और जिसमें बहुत ज्यादा पानी भी ना हो। तो ये कौन लोग थे? इनके हमें ज्यादा पता नहीं चलता कि स्पेसिफिकली कौन सी कौम थी। बाज मुफसरीन ने लिखा ये समूद के बचे हुए लोग थे, बाज ने औरों का कहा है, लेकिन जो कहते हैं कि समूद के भी जो बाकी रह गए थे लोग, फिर बाद में उनके पास एक और नबी आए थे उन्होंने कहा, तो उन्होंने उन नबी की मुखालफत भी की, उनको झुटलाया भी, और एक कुएं में उनको फेंक दिया था। अल्लाह अकबर, एक कुएं में उनको फेंक दिया था। अब आप सोच लें एक नबी को कुएं में फेंकना, और इस तरह से कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कि उन्होंने ये क्या सलूक उनके साथ किया, सिर्फ इस वजह से कि वो उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे, वो उन्हीं की आखरत के लिए फिक्र करते थे, उन्हीं को जहन्नुम से बचाना चाहते थे, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब है लोग इस तरह के मामलात करते रहे हैं पास्ट में भी, कि जो हक बात करता है उसके साथ क्या क्या सलूक करते रहे हैं। ये नहीं कि जो पहली दफा किसी ने मुझे कह दिया, मेरे आगे मुंह बना लिया, वो तो मुझे देख के ही भागना शुरू हो जाते हैं और मुंह बनाने लगते हैं, और फिर कहते हैं बस बस हमें ना बताओ, और इस तरह मुझे डिग्रेड करते हैं, तो पता नहीं मेरे साथ ही कोई ऐसा मामला हो रहा है। नहीं, लोगों ने तो जान तक ले ली नबियों की। अल्लाह ताला ने उस कौम को तबाहो बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया फिर। लेकिन देखें तो सही कि उन्होंने किया क्या था। बाज कहते हैं ये वो जो कौमे शुएब गुजरी है उसके बारे में, बाज कहते हैं असहाबुल उखदूद, बाज कहते हैं जो हबीब नज्जार थे ना जिनका सूरह यासीन में जिक्र है, वो उनकी कौम का मामला है कि उन्होंने ऐसे अपने पैगंबर को किया कि कुएं में डाल दिया। लेकिन जो भी कौम है उससे हमें नहीं कुछ है, मगर हमें ये समझना चाहिए कि कुएं का जिक्र क्यों आया, असहाब रस क्यों उनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने नबी के साथ ये मामला किया। तो सोचें कि नबियों के लिए मेरे उनके कितने जर्फ थे, कितने बड़े हौसले थे कि कौम पीछे पड़ जाती थी। नूह अलैहि सलाम को भी तो मार मार के उनको उनका ये बुरा हाल कर देते थे कि वो कई दिन अपने घर में पड़े रहते थे, इतना उनको मारते थे। नबी को ऊपर हाथ उठाना, सोच सकते हैं आप? और फिर नबी को इजाजत नहीं होती थी कि वो चला जाए इनको छोड़ के, या नबी को ये इजाजत नहीं होती थी, ये चॉइस नहीं होती थी कि मेरा तो मैं अपना नाराज हो गया अपनी कौम से, अब नहीं मैंने इनको बताना, जैसे हम कह देते ना अब बस आज आखिरी दफा, अब इसके बाद मैं नहीं बताती, जहां मर्जी जाए जो मर्जी हो, हम नहीं करते इनके साथ भलाई। तो नबियों की जॉब कितनी टफ थी सोचे। और हम अपने आप को रखें, हमारे साथ तो कोई भी ऐसा मामला नहीं होता, फिर भी हम किसी की चंद बातें नहीं सुन सकते, या इवन उनका अजीब नजरों से हमें देखना नहीं बर्दाश्त करते, और हम बस काम छोड़ के बैठ जाते हैं, और हम कभी इस वजह से भी उठते नहीं है काम करने के लिए, काम ही नहीं करते कि कोई मुझे कुछ कह ना दे, यानी इस डर की वजह से कि मेरी इज्जत ना कहीं खराब हो जाए। इतना हमें अपनी इज्जतों का फिक्र होती है, इतना उसके ऊपर कुछ जरा सा भी कुछ जरा बात ना आ जाए। और नबियों के हाल देखे, फिर उनको ये भी नहीं था कि वो कोई फीस लेते थे इसकी, चलो भाई दुनियावी फायदा हो गया उनको, या उनको बड़े बड़े ओहदे लोगों ने दे दिए हो। आप देख ले, मुखालफत ही मुखालफत है, और हमारा हाल क्या है कि जब तक वो दुनियावी फायदा हासिल ही ना हो तब तक हम काम ही नहीं करते। फीस अभी लीला तो कहते हैं, फीस अभी लीला कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हमें यह भी शौक होता है हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया, हमें शाबाशें क्यों नहीं दी गई, या कोई ओहदा क्यों नहीं दिया गया, या हमें फिर क्या फायदा हुआ इसका, हमने क्यों करना था ये, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। यानी फी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट हमारे हमें शायद सही समझ नहीं आया, हमें पता ही नहीं क्या होता है फी सबीलिल्लाह, तो बेलॉस हो जाना होता है सिर्फ अल्लाह की खातिर, कि जहां पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, कोई एक बंदा भी तारीफ करने वाला नहीं, शुक्रिया करने वाला नहीं, फिर भी इंसान करता रहे काम, ये होता है फी सबीलिल्लाह। पैसे और ओहदे मिलना तो दूर की बात है, कोई जरा सा एक्नॉलेज भी नहीं करता हो, मेरा नाम कहीं लिख के ना लगाया गया हो, किसी को पता ही ना चला हो, तब भी मैं काम करती रहती हूं, वो होता है फी सबीलिल्लाह। बाकी सब में जिसमें जरा भी कहीं ये आ जाए, वो देख ले, वो कर दे, वो एक्नॉलेज कर दे, उसको पता चल जाए ये काम तो मैंने किया है ना, सब जाया है, फिर वो उनकी खातिर तो हो सकता है, किसी टीचर को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए, स्टूडेंट्स को पता चल जाए, फिर वो सारा काम जाया है। पैगंबरों का काम फी सबीलिल्लाह होता था, उनको कुछ भी लोगों से नहीं मिलता था। और आप ये भी देखें कि आज हम सोचते हैं ना जो हक पे हैं उन पे इतना जुल्म क्यों ढाया जा रहा है, और बाज लोग यही देख के अपने ईमान से हाथ धो बैठे कि जी फलां जगह पे फलस्तीन में क्यों ऐसा हो रहा है, फलानी जगह पे क्यों ऐसा हो रहा है, मुसलमान फिर इतने पिस क्यों रहे हैं, अगर हक पे होते तो फिर इनके साथ ये क्यों होता, अगर खुदा होता तो इनकी मदद क्यों ना करता, या अगर ये सच्चे रास्ते पे होते तो फिर इनके साथ मदद ना आती क्या, जो अभी तक देखो इनके साथ ये क्यों हो रहा है, इस वजह से वो अपना ईमान ही खो बैठे, यही उनके लिए इम्तिहान बन गया। तो आप देखें तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो फिर भी आम इंसान है ना, पैगंबर जो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए, उनके साथ ये सब कुछ होता रहा। तो इसके बाद तो हमें कहना ही नहीं चाहिए कि उनके साथ क्यों फिर ऐसा हो रहा है, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए पैगंबरों के साथ, हत्ता कि उनकी जानें ले ली गई। और देखिए कुएं में डालना कोई बात छोटी नहीं है, कुएं में फेंक के, जिसको कुएं को देख के भी हौल आता है, इंसान कोई गहरा कुआं देख लेता है ना चक्कर आने लगता है, इंसान पीछे हट जाता है, फेंक के और ऊपर से मट्टी डाल दी, यानी जिंदा ही उनको दफन कर दिया। कैसी कैसी लोगों ने तकलीफें उठाई हैं इस दीन की खातिर, अल्लाह के रास्ते में किस किस तरह लोग सताए गए हैं, किस किस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम ये नहीं करते कि थोड़ा सा हम किसी को अल्लाह की बात बता दें, अपने करीब वालों को, अपने खानदान वालों को अल्लाह ताला से करीब करने के लिए कुछ उन तक पैगाम पहुंचा दें, हम बस डरते ही रहते हैं हमारी दोस्तियां ना खत्म हो जाएं, हम इनकी लिस्ट से, फेवरेट की लिस्ट से आउट ना हो जाएं, कहीं ये मुझे कुछ कह ना दे। ऐसे लोग फिर बस अपनी इज्जतें बचा के ही बैठे रहे, वो अंबिया वाले काम तो नहीं कर सकते, वो बड़े दर्जों वाले काम नहीं कर सकते जो उनको जन्नत में ऊपर लेके जाएं। हम चाहते हैं दावत दीन का काम ठीक है हम करें भी, लेकिन हमें कोई कुछ कहे भी ना, ये नहीं हो सकता। अगर अंबिया ने बातें सुनी है तो ये नहीं हो सकता कि आप दावत का काम करें और आपको कुछ भी ना कोई कहे, ऐसा नहीं होगा। जिस वक्त कोई कुछ कहे तो शुक्र अदा किया करें, पैगंबरों को इतना कुछ कहा गया, शुक्र है मैं भी उनकी सफ में, उस काफले में शामिल हो गई जिसके आगे आगे पैगंबर है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जैसे काम करने वाले, जो उनकी दावत की जैसी दावत देने वाले, तौहीद की दावत देने वाले, एक ही काफले में सब चल रहे हैं, जिसके लीडर पैगंबर है। शुक्र है मैं भी कहीं पीछे उसी काफले का हिस्सा तो बन गई, तो इस पे शुक्र अदा किया करें, ये कहें अल्लाह ताला बस मुझे उसमें शामिल कर लेना। फिर समूद, समूद साले अलैहि सलाम की कौम जो हिजर में रहते थे, ये भी अपने घरों में घुटनों के बल गिर के रह गए थे, जब ऐसी चीख आई थी कि उठ ही नहीं सके, और जलजला भी आया था, सुबह को देखा तो जाफिया थे, यानी घुटनों के बल गिरे हुए थे। वाद हुआ फिरौन और आद और फिरौन, ये आद भी एक कौम थी, इनको कौम इसलिए नहीं कहा क्योंकि इन कौम के नाम ही है, जिनके पास हूद अलैहि सलाम आए थे, इन्होंने जुटला दिया और इनके ऊपर आंधी आई थी, सबा लयाल समानियत अय्याम चलती रही थी वो, अल्लाह ताला ने इनके तकब्बुर को देखें कैसे तोड़ा, कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो, तो एक हवा जैसी छोटी सी मामूली चीज जिसको लोग कुछ समझते नहीं है, हवा को क्या समझते हैं जो तो दिखती भी नहीं है, उसी से अल्लाह ताला तुम्हें खत्म करता है। और फिरौन, फिरौन को कैसे पानी में गर्क कर दिया, जिसने अपने आप को कहा था अना रब्बुकुम अलआला। और एक लूत, और लूत के भाई से कहा गया कि लूत अलैहि सलाम इनकी कौम में से तो नहीं थे, लेकिन इनकी कौम में शादी की थी उन्होंने, तो इसकी वजह से उनके दामाद बने, तो ये भी वो शर्मनाक काम करने वाले लोग थे, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश भी की, और हर पत्थर जो था ऐसे था जैसे किसी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो उसी को जाके हिट करता था, उसके सर में घुस जाता था, दूसरी तरफ से निकल जाता, अल्लाह ताला ने इनको उठा के ऊपर से पटक के नीचे मारा, जिब्राइल अलैहि सलाम ने अपने पर पे रख दिया पूरी बस्ती को, और ऊपर से फिर पत्थरों की बारिश हुई है। ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया, वासाबुल ऐका, और ऐका वाले ये कौन लोग थे, अल्लाहु आलम, बाज़ जगह कहते हैं कि ये शुएब अलैहि सलाम की कौम थी, चूंकि ये दरख्त ऐका दरख्त को कहते हैं, तो दरख्तों वाले हैं, जंगल के, जंगल वाले कहलाए, क्योंकि ये जंगल था वहां पे जहां पे ये रहते थे, और इन पे भी कितने अरसे तक बारिश नहीं हुई, तो उन्होंने दूर से बादल देखा तो बड़े खुश हुए कि बादल आ गया और बड़ा ठंडा नजर आ रहा है, जाके सारे बादल के नीचे खड़े हो गए, और फिर उस बादल ने जो आग बरसाई फिर कोई भाग ना सका, खत्म हो गए सब। वकौम तुब्बा, और तुब्बा की कौम, तुब्बा यमन के बादशाहों का नाम था तुब्बा, ये कौम तुब्बा का जिक्र सिर्फ कुरान पाक में 2 दफा आया, एक पहले हम पढ़ चुके हैं और एक अब है, ये कौम एक जमाने में गुजरी, किस में गुजरी, या कौन से पैगंबर इनके पास आए ये हमें नहीं पता चलता, मगर बस इसी तरह इसका जिक्र आया कौम तुब्बा। देखो कौम तुब्बा भी कैसे खत्म हो गई, क्योंकि ये कौम अरब लोग इनको जानते थे, कुरैश जानते थे, उनका भी जिक्र आ गया। इनका भी जुर्म यह था, इन्होंने पैगंबर को झुटलाया था। इन तमाम कौमों ने रसूलों की बातों को कुछ नहीं समझा, रसूलों को बस बातें बना के मुखालफत करके उनको झुटलाते रहे। रसूल की बात को झुटलाना अल्लाह की बात को झुटलाना, रसूल के पैगाम का इनकार करना अल्लाह की बात का इनकार करना, एक छोटी बात नहीं होती। तो तारीख से अल्लाह ताला ने सबक हासिल करने का दर्स यहाँ पे दिया है कि होश करो, इन कौमों से ही सीख लो तुम। बहुत सारी सूरतों में इन कौमों के हालात डिटेल के अंदर आए हैं, यहाँ पे सिर्फ नाम आए हैं। बात बताने की ये है कि इनको अल्लाह ताला ने अपने अजाब का निशाना बनाया, इनके ऊपर अजाब की बात, कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल, सब ने रसूलों को जुटाया। यही बात, ये नहीं कि कोई इनके ऊपर क्या, वो अब खोदते हैं जब जमीन और इनको आसार मिलते हैं कौमों के, तो कहते हैं इनके ऊपर कोई तूफान आ गया, इनके ऊपर जलजला आ गया, इनके ऊपर कोई बीमारी आ गई थी, देखो ये अपने घरों के अंदर ही पड़े हुए हैं। अब उनको मिलते हैं वो लोग नीचे पड़े हुए, पता चलता है कि भाई ये ऐसे ही दफन हो गए कि क्या हुआ, उनकी बातें बताते हैं, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है कि सब ने रसूलों को झुटलाया था, इसलिए तो तूफान आए, इसलिए तो जलजला आया, इसलिए तो कोई बीमारी आई, या इसलिए तो कोई लावा फट गया, कुछ बात तो हुई थी ना, क्या रीजन हुई कि सब के सभी खत्म हो गए। फहक का वाईद, तो हक हो गई मेरी वाईद। वाईद क्या थी कि अजाब आ जाएगा अगर रसूलों को झुटलाओगे, तो वो उन्होंने उनके लिए सच हो गई, वो इसके मुस्तहिक थे, डिजर्व करते थे। अजाब की धमकी इनके ऊपर पूरी हो गई। अल्लाह हु अकबर, आफा आईना बिल खल्किल अव्वल। तुम क्या सोचते हो जब हमने पहली दफा पैदा किया आसमानों को, जमीन को, ये सारी चीजों को, तो हम थक गए हैं पहली दफा पैदा करके। ये लोग कहते हैं ना, इनमें तो बहुत मशहूर है अहले किताब में कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, 7वें दिन उसने आराम किया, हॉलीडे, इसीलिए वो कहते हैं इस दिन आराम किया था। अस्तग़फिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला इनको पैदा करके कुछ थका थोड़ी है कि वो अब दोबारा नहीं पैदा कर सकता। बल हम फी लबसिन मिन खल्कन जदीद, बल्कि वो शक में कि दोबारा कैसे, नई पैदाइश कैसे होगी, यानी उनको ये है कि पता नहीं थक गया तो दोबारा कैसे नाउजुबिल्ला पैदा करेगा। इसलिए इंसान को ना वो देखता है कि पता नहीं जैसे मैं थक जाता हूं ना, इसी तरह पता नहीं इतना काम करके अल्लाह ताला थक गया होगा। नहीं, उसको ना थकन है, खुशी ना तुम वाला ना, तो ऊंग तक नहीं, थक के इंसान सो जाता है ना, या ऊंग भी लेने लगता है, जब बहुत थक जाता है तो बैठे बैठे भी सो जाता है, तो उसको तो ऊंग और नींद है ही नहीं, उसको कोई थकावट है ही नहीं। देखिए, और कैसे आप ये कायनात जो चलती भी है ना, इसको ही देख के सोच लें कि वो थकता नहीं होगा और उसको नींद ऊंग भी नहीं होगी। अगर वो थक जाता ना तो आराम करता, आराम करता तो ये कायनात तो तबाह हो, बर्बाद हो जाती। तो वो हर टाइम इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको चला रहा है, हर टाइम इनकी निगहदाश्त कर रहा है, हर टाइम इनकी निगरानी कर रहा है, खुद ही खुद ही से नहीं हो रहा है सब, हर टाइम निगरानी हो रही है। वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्स, और अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को, वा और ला और कद, तीनों ताकीदें हैं कि जिसके अंदर इंसान को एम्फसाइज किया गया कि यकीनन यही बात है कि हमने इंसान को पैदा किया है, इंसान खुद ब खुद नहीं पैदा हो गया, या एवोल्यूशन से नहीं हुआ कि पहले बंदर थे, अरे बंदर से इंसान बन गए, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग इस तरह की थियरीज लेकर आते हैं कि इंसान हैरान हो जाए। तो अभी इतने हजारों साल से तो इंसान देख रहे हैं, इंसान से ही इंसान पैदा होता है, अब क्यों नहीं बंदरों से आगे इंसान बन जाते। उसी वक्त ही एक बनना था। और फिर अल्लाह ताला ने इसको सोचने समझने की सलाहियत दी। वनालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमें पता है जो इसके दिल में वसवसे उठते हैं, हम जानते हैं क्या वसवास उठते हैं। अच्छा देखें, अब नफ्स के अंदर, दिल के अंदर वसवसे आते हैं, अल्लाह ताला जानता है वो जो ख्याल दिल में उठता है ना, चाहे शैतान डालता है चाहे इंसान का अपना नफ्स भी डालता है। शैतान आउटर एक दुश्मन है जो वसवसे डालता है, और अंदर का भी एक दुश्मन है जो हमारा नफ्स है, वो भी वसवसे डालता है। अल्लाह ताला को पता है जो भी ख्यालात उभर रहे हैं दिल में, और फिर वो इंसान उन ख्यालात के ऊपर कितना चलने लगता है, कितना उनको एंटरटेन करता है। अब हम कहते हैं हमारा क्या बस, अब शैतान ने हमारे अंदर वसवसा डाला तो हमारा क्या कसूर है। हमारा कसूर ये होता है कि जब हम उस वसवसे को लेकर आगे से आगे कहानी बना लेते हैं। एक ख्याल आया कि फलां वो बड़ी लालची है, उसके बाद हमने सोचना आगे शुरू कर दिया, हाँ लालची है, और देखो उस वक्त भी तो उसने ऐसे किया था और उस वक्त भी ऐसा किया था, और देखो अब तो मैंने उसे बोलना ही नहीं है, और अब तो देखो इसने बुलाया मैंने जाना नहीं है, और अब तो देखो फलां वक्त में भी इसने मुझे ऐसे कहा था। और ये तो वो आगे से आगे जो हम ये स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं वो फिर हम खुद करने लगते हैं। शैतान वसवसा जरूर डालता है, या नफ्स जरूर वसवसे डालता है अंदर ही अंदर, लेकिन ये जो बातें करते हैं ना वो हम खुद करना शुरू कर देते हैं। चाहे तो उसी वक्त औज़ु बिल्लाह पढ़ के, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के हम उसको झटक सकते हैं, और कुछ और सोचने लगे और कुछ तावील देने लगे, कुछ जस्टिफिकेशन दे, लेकिन हम भी बात आई और हमने उसको दिल में बिठा लिया। आपके दरवाजे पे बहुत सारी नॉक्स होती हैं, सबके लिए आप दरवाजा नहीं खोलते, आप देखते हैं कि किसके लिए खोलना है और किसके लिए नहीं खोलना। शैतान भी इन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर इन्नास, सुदूर में डालता है, सीने में डालता है बात, सीने में डालता है। दिल का दरवाजा हम फिर खोलते हैं तो बात अंदर आती है, जिस बात के लिए हम दिल ना खोलें वो अंदर नहीं जगह पकड़ सकती। हम खुद इनवाइट करते हैं, अब हम कहीं बाहर देखते हैं कि कोई चोर है, उसके लिए हम खुद ही दरवाजा खोल दें तो वो तो अंदर आया ही आया ना, और फिर हम उसको बिठा भी ले अंदर, तो हमने तो अपना नुकसान खुद कर लिया। इसी तरह वसवास है, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है जो नेक लोग हैं ना, जो मुत्तकी लोग हैं, वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये शैतान का वसवासा है, वो अलर्ट हो जाते हैं। और शैतानी नज़ग़ुन फ़स्ता इस बिल्ला, अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो तुम्हारे अंदर कोई डालता है ना ऐसी बात, तो फौरन अल्लाह की पनाह ले लो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, उज़ु बिल्ला पढ़ो ना, कि उसके ऊपर सोचना शुरू कर दो। फिर हमें मजा आने लगता है, फिर हम और अपने दिल के वो बोले निकालते हैं कि हाँ ऐसे भी और ऐसे भी। तो सीना एंट्रेंस है, फिर दिल में इंसान वो दरवाजे खोल के जगह दे देता है, फिर आंखें कान हाथ दिल के हुक्म पे अमल करते हैं। अब मैंने जाना भी नहीं है, अब मैंने फिर ये करना है, एक डाली उसने बात, चलो वो चीज देखते हैं, चलो इस ईमेल को खोल के तो देखें, चलो इस टेक्स्ट को खोल के तो देखें। अब उसने इस ख्याल डाला, आपने दिल में दरवाजा खोल दिया, आपने टेक्स्ट के ऊपर प्रेस किया, आपने उसको खोला, आंखों ने रीड किया, या वॉइस है तो कानों ने सुना, सारा आपने एंटरटेन आगे आपने किया ना। शैतान सिर्फ वसवसा डाल सकता है, करा नहीं सकता इंसान से, और कोई इंसान वसवास से पाक नहीं है, कोई भी नहीं। हर एक के पास वसवसे आते हैं, कभी दूसरे लोगों के बारे में आएंगे, कभी अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह रसूल के बारे में भी आते हैं, दीन के बारे में आना शुरू हो जाते हैं, कोई बचावा नहीं है। लेकिन फिर हम आगे क्या करते हैं? सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज की शिकायत की थी कि ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं हम अपनी जुबान पे नहीं ला सकते, जुबान पे लाने से पहले हम खत्म हो जाएं, ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं। यानी शैतान तो यलगार करता है ना, वो हमले करता है, ये उसका हमला है। अब इंसानों के बारे में भी आ जाते हैं, इसीलिए हमें कसीर मिन जम से जन से हमें रोका गया, पिछली सूरत में हमने पढ़ा है वो वसवसे लाता है। लेकिन आप गुमान पे आगे आगे बढ़ते ना जाए, तो शैतान तो अंदर खून की तरह दौड़ता है। उसकी चाल ये होती है कि इंसान इस वसवसे को एंटरटेन कर ले, इसके लिए दरवाजा खोल ले, और फिर आगे चल पड़े अल्लाह की नाफरमानी की बात लेके ना, आगे चल पड़े, इस पे अमल कर ले। आदम और हव्वा को भी जब जन्नत में थे वो, तो शैतान ने वसवसे ही डाले थे। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास कहते हैं, एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और बोला, हमारे दिल में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं और वो ऐसे इस तरह के होते हैं कि हम उनको जुबान पे नहीं ला सकते, और इसके बजाय कोयला हो जाएं। लेकिन ऐसे 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 यानी इस तरह के कोई होंगे जो कि इतनी इतने संगीन, इतने सीरियस ऐसे होंगे कि कहते हैं इससे बेहतर है कि मैं कोयला हो जाऊं, वो मेरे लिए बेहतर है। तो आपने फरमाया, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। फिर तुम उस अल्लाह की जिसने इबलीस को के मकर को वसवसे की तरफ लौटा दिया, उसकी पनाह लो, उसकी पनाह में आ जाओ। तो नेगेटिव जितनी भी बातें आती हैं ना, वो सब शैतान की तरफ से होती हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है वो जानता है। इंसान को जो नेगेटिव बात आए तो इस चीज को ना सोचें कि क्यों आई, क्योंकि वो आएगी, ठीक है, वो आएगी जरूर। ये नहीं कि हम इतने नेक हो गए अब हमारे पास क्यों आ रही है। जहां पे ईमान होता है, खजाना जहां पे होता है वहीं पे चोर आता है ना। जितना ईमान होगा तो चोर तो आएगा, शैतान तो आएगा। तो कहें अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, सूरह मोमिनून में। फिर आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतान रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्ती। सूरह फातिहा जब पढ़ने लगते हैं नमाज में, तो उस पे भी ये वाले तावुज़ कहा करें, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतान रजीम मिन हमज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्ती। इसके ख्यालात जो डालता है, वसवसे भी जो डालता है, जो फूंके मारता है, जो थुतकारता है। आपसे सलम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी के पास आता है, कहता है ये किसने पैदा किया, वो किसने पैदा किया, वो किसने पैदा किया। फिर कहता है, जब आप कहते रहते ना अल्लाह ने अल्लाह ने, फिर कहता है अल्लाह को किसने पैदा किया। तो आपने फरमाया, जब ये नौबत आ जाए तो फौरन अल्लाह की पनाह में ले आ जाओ और इस ख्याल को छोड़ दो। तो वहीं छोड़ दें उस वसवसे को ना, उसको आगे बयान करें जी मुझे तो ये वसवसे आते हैं, मुझे तो ऐसे किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक वो ख्याल था ना उस वक्त तक उसके ऊपर पकड़ नहीं, लेकिन जब जुबान पे आ गया तो अब जुबान का बोल बन गया, अब पकड़ हो सकती है। किसी को ना बताएं, बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे थू थू करें ऐसे, जिसमें थोड़ी सी थूक भी होती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी थूक, लेकिन ऐसे थुतकारना, और औज़ु बिल्लाह पढ़ें। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हदीद की आयत नंबर जो 3 है ना, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, तो ये भी बताइए जब अल्लाह ताला के बारे में वसवसा आए कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो हर चीज का इल्म रखता है। तो वसवास अल्लाह ताला को पता है, वो जानता है अच्छी तरह, और इससे इंसान फिर केयरफुल हो जाता है। अला यालमु मन खलक, क्या उसको ही नहीं पता होगा जिसने पैदा किया। तो वो बहुत अच्छी तरह जानता है, वह आलिमु बिज़ाति सुदूर, वो सीनों के भेद जानता है। एक तो ख्यालात होते हैं ना सिर्फ, एक हमारे दिल में ना राज होते हैं जो हम किसी के सामने भी नहीं जाहिर करते। वो राज, वो कुछ तो दिल में ऐसे ख्यालात हैं वो हम कभी बोल भी देते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो सीक्रेट्स हैं, अल्लाह ताला को उनका भी पता है। और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी जानता है कि इसने क्या सोचना है कयामत तक, कि हमारे ख्यालात, हमारे हालात, हमारी सोचें, वो सब जानता है। सुभान अल्लाह। बोल तो फिर भी कोई एक्शन होता है, ख्याल तो कहीं नजर ही नहीं आता, ख्याल का तो कोई वजूद हमें पता ही नहीं है। लेकिन जिसका कोई वजूद नहीं, जहन के अंदर ही उठा और वहीं खत्म हो गया, वो रब उसको भी जानता है। कौन सा ख्याल आया, आपने अपने अंदर ही फाइट किया। अब आप देखें ना, आपको ख्याल आया कि भाई मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, फिर शैतान ने डाला नहीं, बहुत नींद आ रही है, वैसे भी रात को लेट सोई थी, लेकिन आपने उसे फाइट किया। देखो नहीं, रात को खड़ी होंगी ना अल्लाह ताला कि आगे खड़ा होना आसान हो जाएगा। अभी खड़ी होती हूँ, इस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, अभी मांगूंगी अल्लाह ताला से, आखरत की भलाई मांग लूँ, दुनिया की भलाई मांग लूँ, अपने मसलों का हल मांग लूँ, अल्लाह से बातें करने के लिए मैंने खड़े होना, दर्जात की बुलंदी मिल जाएगी मुझे। ये तो कबूलियत का वक्त है, आपने अपने आप को उठा लिया, तो ये आपने खुद से फाइट किया, वसवसा आया था लेकिन आपने फाइट किया। अल्लाह ताला जानता है कौन फाइट कर रहा है उनसे और कौन खुद ही हथियार डाल देता है, आजा आजा बस वसे, आ गया तो बैठ ही जा। और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम ज्यादा करीब हैं उसे, इतना करीब नहीं कि शहरक से, शहरक जितना करीब, शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। शहरक क्या होती है, ये जगल और वेन जिसको कहते हैं ना, जिस पे हमारी जिंदगी का इन्हिसार है, हम जिंदा इसलिए हैं कि जो ये इसके अंदर ये खून रवा है। जैसे आपको मैं आसान बताती, बकरे को ज़िबा करते हैं ना तो उसकी शहरग काटते हैं, तो घट घट खून निकलता है और एक आवाजें सी निकली, वो शहरग कटती है उसकी। अल्लाह हू अकबर, ये कट जाए तो इंसान खत्म। ये कितनी करीब है हमारे से, समझ ले, जिसको हम इजी वर्ड्स में कहते हैं लाइफ लाइन, तुम्हारी लाइफ लाइन से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे करीब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये बात किसी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है और किसी के लिए बड़ी वहीद हो सकती है, इसलिए कि जब जो इंसान अल्लाह से दूर भागता है उसको कह दिया जाए कि वो तो तुम्हारी शहर से भी करीब है, तो वो खौफजदा हो जाएगा, और कोई जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला है उसको सुकून आ जाता है। ये दुनिया मेरे साथ हो ना हो, मैं कितना भी अकेला हूं, वो अमा कुम अना अमा कुम तुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। मूसा अलैहि सलाम ने कहा था इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, वो तो तुम्हारी हबलुल वरीद से भी ज्यादा करीब है। तुम सोचते ये तुमसे करीब है, ये गर्दन में होती है, ये तुमसे करीब है, ये कितनी करीब है ना ये, लेकिन हम इससे भी ज्यादा तुमसे करीब है, तो हम तुम्हारी हर बात को जानते हैं। आप बताएं, आपको पता है आपके जिस्म में कितने पोर्स हैं, स्किन में कितने पोर्स हैं, जिस्म पे कितने बाल हैं, नहीं जानते ना, अल्लाह ताला को पता है। ये इतनी बारीक बातें जो हमें अपनी खुद भी नहीं पता, वो भी वो जानता है। कौन सा अभी ख्याल उठने वाला है वो उसको भी जानता है। अल्लाह हू अकबर, और शैतान किधर किधर से आ रहा है वो ये जानता है। क्या शकूक दिल में उठ रहे हैं वो जानता है। नियत के इरादे क्या है, नियत क्या है उसको भी जानता है। हम बहलाते रहे अपने आप को, नहीं मेरी तो नियत ये है, लोगों को बहला सकते होंगे, वो जानता है। और जब सब साथ छोड़ जाएं तो ये कितनी बड़ी तसल्ली है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब गम होने लगे ना, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं अकेली, तो अकेले तो तुम कभी भी नहीं हो, जिसके साथ उसका रब है वो कैसे अकेला हो सकता, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए और आपके साथ आपका रब खड़ा हो, तो कोई डर होना चाहिए आपको या कोई गम होना चाहिए? नहीं, पूरी दुनिया की ताकतें भी मिल जाएं, कोई गम नहीं। इसी तरह बाज दफा कोई लोग इल्जाम लगा देते हैं किसी पे, बोहतान बांध देते हैं, तब भी कोई कह दे भाई इसने तो ये किया है, या इसकी तो नियत ऐसे थी, या ये तो ऐसे करती, आप प्रूव नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आप पे शक करना शुरू हो जाता है, या कोई कहता है जी ये इसने ऐसा कहा, आप लाख समझाते हैं लाख समझाते हैं, नहीं भाई ये गलत फहमी हो गई, ऐसा नहीं है, वो मान के ही नहीं दे रहा। तब ये पुरसकून रहे, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानता है ना, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कितना करीब है वो, उसका नाम है अल्लाह ताला का अल करीब, क्योंकि वो तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुमसे करीब है, इंसान की अपनी जान जितनी उससे करीब है उससे भी ज्यादा। फिर गम किस बात का, वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बी, जान लो कि अल्लाह ताला तो दरमियान में इंसान के और उसके दिल के, आपका दिमाग और दिल के दरमियान है ये शहरक, अल्लाह ताला इसके दरमियान है, ख्याल तो भी उठता भी नहीं और उसको पता होता है, और वो तमाम राजों को जानता है और तमाम सरगोशियों को जानता है और तमाम गमों को जानता है और तमाम ख्वाहिशात को जानता है जो दिल में सर उठाती हैं, और जज्बात को जानता है। ये एक गलत है जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह माफ करे, जब अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी जसारते कहते हैं, मैं उसे निकालने से भी डरती हूँ सिर्फ मिसाल देने के लिए, लोग कहते हैं उसको क्या पता मेरे ऊपर क्या गम टूट रहा है, उसको नहीं पता होगा, उसको क्या पता मैं किस चीज से गुजर रही हूं, उसको नहीं पता होगा जो हबले वरीद से भी ज्यादा करीब है, इतना नहीं है इससे ज्यादा करीब है, उसको नहीं पता होगा। अल्लाह अकबर। हाँ मगर उसको अच्छा लगता है कि जब आप अपना गम उसके आगे बयान करते हैं उसके आगे रखते हैं, उसको अच्छा लगता है कि जब आप अपनी जज्बात का इजहार उसके आगे करते हैं। अल्लाह ताला को नहीं पता था ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए हैं, उनकी बीवी बांझ है, अल्लाह ताला को नहीं पता था कि उनको एक औलाद चाहिए, उनके दिल में ये ख्वाहिश है, पता है उसको, क्यों फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला को पसंद है कि उससे ऐसे बंदा बातें करे, लोग आपके दुखड़े सुन के और बोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या है अब तो इसका फोन भी नहीं उठाना, ये एक ही बातें वही बस सुनानी होगी इसने, सर खा लेगी मेरा, लोग नहीं सुनना चाहते रोज रोज के हमारे रोने धोने हमारे मसाइल हमारी परेशानियां, अब ये हो गया वो हो गया, वो तंग पड़ जाते, एक एक वो रब नहीं तंग पड़ता, आप जब चाहे अपना दिल उसके सामने खोल के रखते, और जितना वो समझता है ना उतना नहीं कोई समझ सकता, आप इन दूसरों को बताते हैं ना वो मे भी समझ ही ना सके, आप लाख कोशिश कर रहे हैं तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही, तुम्हें नहीं पता मैं किस चीज से मैं कितनी परेशान हूं, वो शायद नहीं समझ सके कभी, कि वो रब समझता है वो जानता है उसको पता है आपका माजी भी पता है हाल भी पता है और मुस्तकबिल भी पता है, पीछे क्या गुजर चुका वो सब उसको पता है। लोग बाज दफा लोगों के ऊपर डिफरेंट बातें लगा देते हैं, नहीं भी पता होता उनको लेकिन डिफरेंट बातें कहने लगते हैं जो बहुत हर्ट करती हैं, वो जो अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा होता है ना इंसान, वो अल्लाह ताला को पता है, वो जो आपने चुप साध ली अल्लाह मैंने नहीं इसका जवाब देना सिर्फ तेरी खातिर मैं जवाब दे सकती हूँ, वो उस चुप का भी अल्लाह ताला को पता है कि आप बोल सकते थे लेकिन आपने अपने आप को जब्त किया, उस सबर का भी पता है, वो सबर का घूंट जो आपने पी लिया अंदर ही अंदर क्या चल रहा था उसका भी उसको पता है, और वो गुस्सा जो आपने बाहर नहीं निकाला इसका इजहार नहीं किया, वो गुस्सा आपने दबा लिया अपने अंदर, हालांकि आपके पास बहुत सारी बातें थी जो आप सुना सकते थे, उसको उसका भी पता है। वो जो रातों को जब आंख खुले आपके साथ पड़े हुए इंसान को नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं किस चीज से गुजर रहे हैं, वो साथ लेटा होगा नहीं पता उसको, लेकिन उस रब को उस वक्त भी पता है, वो जो आपके दिल से हूक उठती है वो अल्लाह, उस हुक को वो जानता है, वो सुनता है उसको, क्योंकि वो नानू अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रगे जान से भी ज्यादा करीब है। तो जो इतना करीब हो वो तो सबसे महबूब होना चाहिए, कोई भी इतना करीब नहीं। हम तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बनाना चाहते ना जो हमसे बहुत क्लोज हो, जिनके पास हम किसी वक्त भी जाएं और अपनी बातें करें। कौन है मेरी बेस्टी, वो जो हमेशा मेरे साथ साथ रहे, जो मेरा हर दुख गम हर मेरी खुशी उसके अंदर शामिल रहे, उसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते, क्योंकि वो बहुत करीब है, किसी बात तो छोड़ता नहीं है वो। यानी इस जिंदगी में भी नहीं छोड़ता, कब्र में सब छोड़ के चले जाते हैं, तब भी करीब है, और हाशर में भी करीब है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जिंदगी में करीब है, सबसे ही करीब है। और उस वक्त जब हमारा कोई नामो निशान ही नहीं था, माँ के पेट में थे, और उस वक्त जब माँ के पेट में भी नहीं थे, रूहें थे, उस वक्त वो करीब था, हमेशा करीब है, साथ साथ है। उसको पता है जो हालात गुजरे, जिन मरहलों से निकल के हम यहां तक पहुंचे, और वो इस वक्त भी हमसे करीब है। तो जुबान पे गिले शिकवे लाने से पहले सोच लिया करें किसकी बात कर रहे हैं। उसकी जो नानो अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो फिर आप कभी अकेले हो सकते हैं, कभी तन्हाइयों की शिकायत ना करें, हाय अकेले रह गए, हाय अकेले हम तो अकेले सब छोड़ गए। नहीं, आपको साथ सबसे बड़ा जो है, किसी ने आपको छोड़ा हो तो उसका गम ना करें, ये अल्लाह है आपके साथ। तो ये बात बहुत खूबसूरत है, जो समझना चाहे उसके लिए। इज यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीन व अनिल शिमाली क़ईद। जब जा लेते हैं दो लेने वाले, ले लेते हैं दाएं तरफ से और बाएं तरफ से बैठे हुए हैं, और आगे भी उनकी सिफत आ रही, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन आतीद। कोई बात जुबान से नहीं निकलती मगर वो मुहाफिज हाजिर बाश, इतने वो अलर्ट है। रकीब होता है वो जो हुक्म पे अमल करने वाला, और जो मुहाफिज और जो निगरान और जो मुशाहिदा करने वाला, और अतीत वो जो हमेशा हाजिर है, कभी गायब ना हो, और वो भी जो गवाही देने की हिफाजत कर रहा है, वो भी अतीत कहलाता है। तो यानी ऐसे तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, ऐसे दो फरिश्ते मुराद हैं यहाँ पे, कि जो हर कॉल और फेल को लेने वाले हैं, जो दाएं भी हैं और बाएं भी हैं और बैठे हुए हैं। यहां से हमें दलील मिलती है कि हमारे साथ किरामन कातिबीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता इंसान की दाएं जानेब होता है, और बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता उसकी बाएं जानेब होता है, और नेकियां लिखने वाला फरिश्ता बुराइयां लिखने वाले फरिश्ते पर अमीन होता है, जिम्मेदार होता है। बस जब इंसान कोई नेकी करता है तो दाएं जाने वाला इसको 10 गुना तक लिख लेता है, और जब इंसान कोई बुराई करता है तो दाएं जाने वाला फरिश्ता बाएं जाने वाले से कहते हैं, इसको 6 घड़ियों तक मोहलत दे दो, इसको कुछ मोहलत दे दो, शायद ये तौबा कर ले। ना हो अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरा बंदा गुनाह करना चाहे तो उसको फौरन ना लिख लो, फिर अगर वो गुनाह कर ले तो उसका एक गुनाह लिखो, और जब वो नेकी करना चाहे तो उसकी एक नेकी लिखो, और वो जब नेकी का अमल कर ले तो फिर 10 लिख देना। और एक रिवायत में आता है 10 से 700 गुना तक लिखने का भी है। दो मुकर्रर है फरिश्ते जो उसकी नेकियां लिख रहे हैं, एक नेकियां लिख रहा है, एक बदियां लिख रहा है। और हमने सूरह हुजरात में पढ़ा था ना, वो जो सारी चीजें हमने पढ़ी, जो बुराइयां हमें अपने अंदर से निकालनी, तो ये ना हो कि हमारा बाएं वाला फरिश्ता जो है ना बहुत बिजी रहे, दाएं वाला बिजी रहना चाहिए, कि वो लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है, और किसी वक्त भी नहीं दूर, और अभी मुंह से लफ्ज निकलता है लेने वाला उसको ले लेता है। अल्लाहु अकबर, यानी वो अलर्ट रहे बैठे में, ऐसे बैठे में कि उन्होंने अपने कलम किताबें जो भी हैं सहीफे खोले में और लिखते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, तो सोचे जरा इंसान का रिकॉर्ड बन रहा है, यही है उसका रिकॉर्ड। इसीलिए हमें एक रिवायत पता चलती है, हसन बसरी फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तुम्हारे लिए तुम्हारे सफीफे को खोल दिया गया है और दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए इब्ने कसीर में, इनमें से एक तुम्हारे दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, जो तुम्हारे दाएं तरफ है तुम्हारी नेकियों को लिख रहा है, और जो बाएं तरफ है वो बुराइयों को लिख रहा है। तो जो चाहे अमल करो, बुरा या भला, यहां तक कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा नामा आमाल लपेट दिया जाएगा, और वो तुम्हारी गर्दन में तुम्हारे साथ कब्र में डाल दिया जाएगा, यहां तक कि वो कयामत के दिन इस किताब की सूरत में निकाला जाएगा जिसे तुम भुलावा पाओगे। खुदा की कसम, इस हस्ती ने तुम्हारे साथ इंसाफ ही किया है कि तुमको खुद ही तुम्हारा मुहासिब बना दिया, यानी इंसान अपना हिसाब लेने के लिए तू खुद ही काफी है, तू तु, 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 खुद तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है। उसके गले में लटकती हुई है उसकी बुक, और कयामत के दिन निकाल दिए। इसीलिए कहा जाए ना, इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफसी कल यौम अलैका हसीबा, आज तो तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी है, कोई चीज इसमें तो ऐड नहीं हुई, ये तुम्हारी अपनी ही बातें हैं जो तुम करते थे। अल्लाह अकबर। इसीलिए मुस्नद अहमद में है ना कि इंसान एक कलमा अल्लाह की रजा का ऐसा किया जाता है जिसको वो को बड़ा इतना समझता ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उसकी वजह से अपनी रजामंदी उसके लिए कयामत तक के लिए लिख देता है। और कोई बुराई का कलमा, नाराजगी वाला, अल्लाह की जो अल्लाह वो नहीं समझता कि अल्लाह ताला इसकी इतनी परवाह करेगा, वो उसकी इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो इतना बड़ा होता है कि वो अल्लाह की नाराजगी लिख बैठता है उस दिन तक जो मुलाकात का दिन है। अलकमा फरमाते हैं कि इस हदीस ने मुझे बहुत सारी बातों से बचा लिया, यानी बहुत सारी बातें बोलने से मैं मतलब बाज आ गया, ये पता नहीं कौन सी बात ऐसी ना निकल जाए। तो ये अल्लाह ताला का अदल है कि उसने तुम्हें खुद ही तुम्हारा मुहासिब बना दिया कि अपना हिसाब खुद ही करते रहो, मैं क्या बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ। वहिना अलैकुम लहाफिजीन, हम तुम्हारे पर मुहाफिज हैं, यानी अल्लाह के फरिश्ते जो अमल लिखते जा रहे हैं, जो मुकर्रर हैं, जो शिफ्टों में आते हैं, एक फजर के वक्त और असर के वक्त उनकी शिफ्ट भी चेंज होती है, तो ये तुम्हारे साथ साथ लगे में किसी वक्त जुदा नहीं होते। सिर्फ बाज रिवायात के अंदर है कि इंसान जब रफाए हाजत के लिए होता है या फिर अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करता, उस वक्त ये अलग खड़े हो जाते, लेकिन फिर भी अगर बोलेंगे तो फिर भी ये लिखने के लिए आ जाएंगे। तो हर बात को लिखते हैं, हर बात को। इमाम अहमद के बारे में आता है अपने कसीर में, ये रिवायत है कि वो जब अपने मरजुल मौत में करा रहे थे, तो जैसे होता है ना इंसान कहता है हाय हाय हाय, तो ताऊस वो फरमाते हैं कि फरिश्ते इसे भी लिखते हैं। तो इमाम अहमद ने कराहना भी छोड़ दिया, सुबहान अल्लाह, और मौत के वक्त तक उनकी जुबान से उफ भी नहीं निकली कि कहीं ये ना हो कि कोई फरिश्ते मेरी हाय हाय भी लिख ले। हम जैसे उठने लगते हैं, बैठने लगते हैं, आए आह ऐसे निकलती है ना, वो भी लिख लेते हैं। सोचिए जरा कितनी कितनी बात लिख रहे हैं। यही हमारे आमाल ही है जो हमारे, समझ ले जैसे आप, ये 24 आवर्स है ना, इन 24 आवर्स में हम 24 पार्सल्स भेज रहे हैं अल्लाह ताला के पास, भेज रहे हैं भेज रहे हैं भेज रहे हैं। कयामत के दिन हमने इन्हीं पार्सल्स को खोल के देखना होगा, हर पार्सल में हमने क्या भेजा। कई घंटे हमारे ड्रामों में गुजर जाते हैं, कई फिल्मों में गुजर जाते हैं, कई फेसबुक में गुजर जाते हैं, और कई घंटे हमारे फोन पे ही गुजर जाते हैं बातें करते करते। सोचे उस पार्सल को हम खोलेंगे तो क्या ये घंटे में मैं यही करती रही? इसमें मैं अल्लाह का जिक्र कर सकती थी, इसमें मैं कोई अपनी आखरत के लिए काम कर सकती थी जो मेरे आज काम आ जाए। हाय या अल्लाह, उस दिन इंसान याद करेगा उस दिन इंसान उन दिनों को याद करेगा, उन कामों को याद करेगा जो वो करता रहा, और इंसान फिर पछताएगा उस वक्त कि हाय ये मैं क्या करता रहा, काश कि मैं कोई नेकी कर जाता इस वक्त में, काश मैं इस वक्त को कुछ किसी ऐसे काम में गुजार लिया होता जिस जो मेरे लिए यहां पे काम आता। अल्लाह हू अकबर। लेकिन हम अपने इस वक्त को कीमती नहीं जानते। लेकिन यौम यतदक्करुल इंसान हुआ अन्ना लहू ज़िक्रा, उस दिन इंसान याद करेगा, लेकिन अभी याद करने का क्या फायदा? यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश कहेगा काश मैंने इस अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। तो फरिश्ते तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और हम ये पार्सल भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं। जो भेजा होगा वही निकलेगा ना, ऐसा थोड़ी कि आज डालें कुछ तो निकले वहां पे कुछ और। हमारी अपनी ही चीजें हैं। आपसे सलम ने फरमाया, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो ये तुम्हारे ही अमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए गिन गिन के रख रहा हूं, और फिर मैं तुमको इनका ही पूरा पूरा बदला दूंगा। जो आदमी बेहतर बदला पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो बेहतर ना पाए तो अपने नफ्स को ही मलामत करे ना कि क्यों क्यों मैंने ऐसा किया। तो फरिश्ते जो है ना बाज दफा अल्लाह ताला से पूछ पूछ के भी लिखते हैं, जैसे कि बाज ऐसे कलिमात हैं जैसे हदीस में आता है कि जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हम इसका कैसे अजर लिखे, अल्लाह ताला फरमाते ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो, या रब्बी लकल हम्द। इंसान ये कलमा बोलता है या इंसान आंसू निकालता है, उसके आंसू निकल आते हैं, उसके चेहरे पे बहते हैं, फरिश्ते कैसे इसका लिखे, ऐसे ही लिख लो। इसी तरह इंसान रोजा रखता है, इसका कैसे लिखे हम अजर, उस दिन ही अल्लाह ताला देगा। तो कई ऐसे अजर हैं जो जैसे या रबी लकल हमदू कमाई अम्बगीली जलाली बची कवासी में सुल्ताने, किसके बारे में भी यही आता है। रिश्ता कहता है अल्लाह एक बंदे ने ऐसा कलमा कहा है, मैं कैसे लिखूं इसका, क्या अजर लिखूं इतना बड़ा कलमा। तो वो पूछते हैं अल्लाह ताला से हम कैसे लिखे। अल्लाह हु अकबर। और बाज दफा इंसान गुनाह का इरादा करता है तो तब भी पूछते, अल्लाह ताला फरमाता है इस बंदे की निगरानी करते रहो, अगर ये गुनाह कर बैठे सिर्फ उतना ही लिखना जितना इसने की, हाँ छोड़ देना तो फिर एक नेकी लिख देना। फिर अल्लाह ताला इन फरिश्तों से फरमाता है, जैसे कि कोई बीमार हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला इन फरिश्तों से फरमाता है कि जो बीमार हो जाए तो फिर तुम उसके लिए वही अजर लिख देना जो कि ये अपनी सेहत के दिनों में करता था। ये हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन से फरमाते मेरे बंदे के उस नेक अमल को लिखते रहो जो वो सेहत के अय्याम में करता था, हत्ता कि मैं इसको उठा लूं या तंदुरुस्त कर दूं। सुभान अल्लाह। तो इंसान बड़ा दुखी होता है ना, आए मैं सेहत थी तो मैं यही अमल करता है, बाज दफा बीमार बड़ा डिप्रेस हो जाता है, मैं क्या करूं मेरे से तो उठ के नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, और अब कितना करीम है कितना रहीम है। तो वो फरमाता है उतना ही लिखते जाओ, क्योंकि अगर ये सेहत के साथ होता तो ये करता ना। अल्लाह अकबर। तो ये रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे ना आमाल, और रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते बहुत अलर्ट हैं, बहुत अलर्ट हैं, उनको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती, कोई उनको आराम की जरूरत नहीं होती है, कोई चीज उनके लिए रुकावट नहीं बनती, कोई उनको खाना पीना नहीं है, कोई उनकी और हाजते नहीं है, उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है और वो है लिखना। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, इंसान को चाहिए वो देख ले उसने अपने कल के लिए क्या भेजा, देख लो
तुम क्या कर रहे हो। बाज जगह पे आता है कि ये सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ, हर चीज। फिर ये इब्ने बास का कॉल है, और फिर उसके बाद जुमेरात को और पीर के दिन उसके वो कॉल जो मुबाह होते हैं, यानी जिसमें ना गुनाह है ना सवाब है, जैसे कि क्या टाइम हुआ है। अब इसमें ना कोई, अब मैंने एक बात कही है, इसमें ना कोई गुनाह की बात है ना सवाब की बात है। हाँ मतलब अगर ये इसलिए होगा कि मैंने नमाज पढ़नी है तो जाहिर है फिर एक चीज है, लेकिन वैसे अगर आपने टाइम पूछा है, मिसाल, एक मिसाल दे रही हूँ, तो फिर वो उन चीजों को निकाल देते हैं और फिर वो सिर्फ रहने देते हैं जिसमें सवाब है या गुनाह है। अल्लाह अकबर। तो इंसान का ये जो आमाल नामा है, यही उसको जन्नत तक पहुंचा देगा या जहन्नम तक। और ऐसा एक हर्फ भी नहीं है जो रिकॉर्डिंग से रह गया हो। हर चीज रिकॉर्ड है, हर चीज रिकॉर्ड है। हमारे पर कोई कैमरे लगा देना तो हम कितने अलर्ट हो जाते हैं। पहले जमानों में वीडियो बनती थी शादियों पे, तो जो वीडियो कैमरे वाला इधर को आता था तो लोग सब अलर्ट होके बैठ जाते, खाना भी छोड़ देते कि मेरी वीडियो खराब ना हो जाए। और अधेर देखे कि हम कितनी फालतू चीजें करते हैं, कितनी बेकार काम करते हैं, कितनी गुनाह के काम आराम से कर जाते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये फरिश्ता मेरे साथ बैठा हुआ लिख रहा है, वो दबी आवाजों को भी सुन रहा है, उनको भी लिख रहा है। इसीलिए तो इंसान कयामत के दिन कहेगा ना, या वैलतना मा ली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरा तो वला कबीरा तन इल्ला अहसाहा ووجدوا ما عملوا حاضرا سورة قاف में, कि वो उस दिन कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, इसमें तो ना कोई बड़ी चीज ना छोटी चीज कुछ भी नहीं रही, कि उफ उफ भी लिख दिया गया, और बेध्यानी में जो हमने बातें कही थी वो भी लिख दी गई, और वैसे ही बैठे हम मजाक कर रहे थे और किसी का मजाक उड़ा रहे थे वो भी लिख दिया गया, हम तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, लो इसमें कौन सी बात थी, वो मजाक भी इसमें लिखे हुए, और वो जो गीबतें थी वो भी इसमें लिखी, और वो जो गालियां थी वो भी इसमें लिखी, और वो जो मैंने गुस्से में बोला था वो तो मैंने गुस्से में बोला था, लोग कहते थे गुस्से में तलाक दी थी, होश में होते तो फिर ना देते, गुस्से में दी थी, वो तो गुस्से वाले भी लफ्ज इसमें लिखे हैं, वो जो लाइट मूड में बातें की थी वो भी लिखी नहीं, वो जो तन्हाई के अंदर टेक्सटिंग में थी, चाहे लिख रहे हैं चाहे बोल रहे हैं, तन्हाई थी टेक्स्ट था वो भी लिखा हुआ, जो आंखें देख रही थी वो भी लिखा हुआ, जो कान सुन रहे थे वो भी लिखा हुआ, जो जुबान बोल रही थी वो भी लिखी हुई, कोई चीज तो रही ही नहीं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको भुगतना पड़ेगा, जो बोला इसको भी भुगतना पड़ेगा, जो देखा इसको भुगतना पड़ेगा, जो सुना उसको भुगतना पड़ेगा। तो हम अपने मुहासबे करते रहें फिर, क्योंकि तो हम में से कोई भी पाक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से फरमाया था ना, मुआज ये जुबान की वजह से सबसे ज्यादा लोग जहन्नुम में ऊंधे मुंह गिराए जाएंगे, ये जो हम ऐसी कमेंट्री करते रहते हैं, कमेंट्री के लिए तो जुबान हमारी भी से फारिग ही रहती है, क्योंकि कमेंट्री बस उस पर कमेंट्री, उस पर कमेंट्री, तबसरे करते रहना, स्क्रीन पे कुछ दे दिया उस पे तबसरे कर रहे हैं, किसी को जाते आते देख लिया उस पे तबसरे कर रहे हैं, उसको तो हम अपना हक समझते हैं ना यार। अब अल्लाह ताला, हम तो इतने काबिल भी नहीं है कि हम इस सब का हिसाब किताब दें, क्योंकि हमें तो खुद ही भी नहीं याद कि हम क्या क्या बोलते रहे, हमें खुद ही नहीं पता कि हमने क्या देखा है, हम भूल गए हुए हम सब कुछ। कल की बातें याद है कि कोई हम में से ऐसा है जो पूरे दिन की अपनी बातों को लिख के बता सके कि मैंने कल क्या क्या बोला था? नहीं याद ना, शौहर के साथ क्या बोली, बच्चों के साथ क्या बोली, हमसायों के साथ क्या बोली, दोस्तों के साथ क्या बोली, उस पार्टी में गई थी तो क्या बोली, हमें तो याद ही नहीं रहता, लेकिन उन्होंने तो लिखा हुआ है ना, जब दिखाया जाएगा और बुक्स खुलेंगी सबके सामने तो फिर क्या अंदर से निकलेगा। और फिर आगे आखरत के हालात, जिसमें पहला मरहला मौत का है, एक दिन तो जाना है, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, और आ गई मौत की बेहोशी हक लेकर, मौत की सकरा, सकरा क्या है, वो सख्ती जो अकल को जायल कर दे, यानी जब मौत आती है तो इतनी सख्ती है, इतनी सख्ती है कि इंसान के होश ही गुम हो जाए, यानी अक्ल ही खत्म हो जाती, यानी जैसे नहीं होता एक नशावर इंसान, उसको तो समझ ही नहीं होती, उसकी अक्ल ही मत्ती मारी हुई होती है ना, पता नहीं क्या क्या मुंह से बोलता रहता है। तो जो मौत की भी ना इतनी सख्ती है, ऐसी तकलीफ है कि उसके होश गुम हो जाएंगे। तो ये यहां मुराद सकरातुल मौत से क्या है, मौत की सख्तियां, वो गशी जो तारी होती है जिससे इंसान की अक्ल मारी जाए, वो मुराद है। तो वो हक लेके आ गई। हक लेके आ गई मतलब क्या, यानी वो चीजें जो इंसान को पहले तो उनका ख्याल ही नहीं था, उनकी तरफ नजर ही नहीं जाती, तो वो हकीकत नजर आना शुरू हो गई, वो हक नजर आना शुरू हो गया, सामने आ गया। उस मौत की बेहोशी तारी होते ही, मौत यानी मौत की बेहोशी हक को ले आई यहाँ पे, ये मतलब, यानी हक को ले आई क्या मतलब, क्या मौत की बेहोशी जू ही तारी हुई ना, हक नजर आने शुरू हो गया, वो फरिश्ते नजर आ रहे हैं, वो दुनिया नजर आने शुरू हो गई, वो अगला जहान नजर आने शुरू हो गया। अरे क्या इम्पोर्टेंट था और क्या नहीं था, वो नजर आने शुरू हो गया, गफलत का पर्दा हट गया। कामयाबी क्या थी और नाकामी क्या है वो पता चल गया बिल्कुल। इस वक्त तो हम, हमें कितने लेक्चर भी सुन लेना, हम शायद समझ ही नहीं सकते क्या है कामयाबी और क्या है नाकामी। एक एकदम जो इंसान बड़ा गाफिल था, गुम हुआ था दुनिया के अंदर, जिसको होश ही नहीं आता था ना, इतने लेक्चर सुन के भी नहीं होश आता ना, वो एकदम होश आ जाएगा। इसलिए हजरत अली ने फरमाया ना, लोग सो रहे हैं उनकी आंखें तब खुलेंगी जब मौत आएगी। वाकई तब आंखें खुलती हैं, क्या किस तरह खुलती हैं, यानी अभी तो हम सिर्फ ये जिस्म की आंखों से देख रहे हैं ना, उस वक्त तो गैब की दुनिया नजर आने लगेगी, वो हकीकत जिसको कभी सोचना नहीं चाहते थे। दालिका मा कुंता मिन होता हीद, यही था ना जिसे तू भागता था, तू मौत से भागता था ना, मौत के जिक्र से भागता था। आए आए डराने वाली बातें ना करो, मौत को याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब आएगी तो कोई तो कहता है मनहूस जिक्र मत किया करो, ये मनहूस बातें ना करो। आप सल्लम फरमाते हैं कसरत से मौत को याद करो, ये कहते हैं मनहूस बातें ना किया करो। आप सल्लम फरमाते हैं ज्यादा जिक्र करो, अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को बहुत कसरत से याद करता है, ये कहते हैं ये डराने वाली बातें ना करो, छोड़ो इस तरह के जिक्र। सोचना ही नहीं चाहते थे, सोचेंगे ही नहीं तो प्लान कैसे करेंगे, सोचेंगे ही नहीं तो कभी उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। मौत हक को यकीन लेके आ गई, सारी हकीकतें जाहिर हो गई, पर्दे उठ गए, वो जहान नजर आने लगा। तो इंसान को अब रियलाइज हुआ कि आगे क्या है, फरिश्ते भी कभी नहीं देखे, वो जहान भी कभी नहीं देखा, इस वक्त सख्ती भी उसके ऊपर गुजर रही है। सख्ती कैसी कि जो जो मौत की सख्ती है ना, इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़मरातिल मौत व सकरातिल मौत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ये दुआ सिखाई है। तो सख्ती क्या होती है कि जो रूह खींचने की सख्ती होती है ना, कि उस वक्त घुट घुट के जो सांस आ रहा होता है, वो बहुत बड़ी इंसान के लिए तकलीफदेह बात है, वो बहुत बड़ी सख्ती है इंसान के लिए। इसके बारे में हजरत अमर बिन अल आस, आपको पता है फातेह मिस्र जो थे, वो अपनी जिंदगी में अक्सर कहा करते थे कि मुझे हैरत होती है लोगों के ऊपर जिनके होशो हवास सलामत होते, फिर भी वो हमें मौत की हकीकत क्यों नहीं बताते। तो जब उनकी वफात का वक्त आया, मौत के किनारे पे पहुंचे, तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि उनको याद दिलाया कि आप ऐसे कहते थे, और पास जा आता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनको पूछा, तो अमर बिन अल आस ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की जो कैफियत है ना, ये नाकाबिले बयान है, मैं इसको बयान भी नहीं कर सकता, बस मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जमीन के ऊपर टूट पड़ा है और मैं इन दोनों के दरमियान पिस रहा हूं। सोचें, आसमान और जमीन के दरमियान कोई स्क्वेश हो जाए, और मेरी हालत ऐसी है कि जैसे मेरी गर्दन पे कोई पहाड़ रखा हुआ है, इतना बोझ, और पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं, और मुझे ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही हो। अल्लाह हु अकबर, क्योंकि सांस ही तो घुटने शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए इंसान अपनी सांस को बंद करे तो वो उसकी हालत बुरी होने लगती है। इंसान कहता है सारी दुनिया की चीजें मुझसे ले लो, सांस वापस दे दो। इतना तो मोहताज और इतना तो छोटा और हकीर है इंसान, ये क्या अल्लाह ताला के ऊपर बातें करता है। ये तो एक सांस की मार है। सांस घुटने लगे ना इंसान कहता है हर चीज, जैसे धुआं वगैरह हो जाए इंसान सफोकेट होने लगे तो क्या हालत उसकी हो जाती। अभी मुझे पिछले दिनों ही किसी ने बताया अल्लाह ताला ये वक्त आसान करे। उन्होंने कहा उनकी वालदा कहने लगी कि जब उनकी सांस उखड़ रही थी और कई दिन वो इस हालत में रही, तो उन्होंने कहा वो इतनी चीखे मार रही थी, ऑक्सीजन भी लगाई हुई थी लेकिन इतनी चीखे मार रही थी कि सांस नहीं आ रही, सांस दो सांस दो। तो ये इतना तकलीफ दे चीज है। हजरत शद्दाद बिन औस कहते मौत का लम्हा दुनिया और आखरत की तमाम हौलनाकियों से ज्यादा हौलनाक है, ये आरों के चीरने से ज्यादा अजियतनाक है, कैंचियों के काटने से ज्यादा सख्त है और हांडियों के उबालने से ज्यादा तकलीफ दे। अगर मुर्दा जिंदा होके लोगों को मौत की सख्ती बता सके तो लोगों का आराम और नींद खत्म हो जाए। ज़्यादा उमर बिन अब्दुल अजीज दुआ किया करते थे अल्लाह हव्विन अलैय मौत, या अल्लाह मुझे मौत की सख्ती आसान कर देना। तो एक तो मौत की सख्ती इटसेल्फ है, दूसरा उस वक्त की और क्या सख्ती होती है कि फरिश्ते नजर आने लगते हैं। और फरिश्ते किस सूरत में आए हैं वो, और एक तो फरिश्ते वैसे ही इंसान को देख के खौफ आ जाता है ना, एक एक उसने मखलूक कभी नहीं देखी। अब अगर उसके अमल सही नहीं है तो वो फरिश्ते भी भयानक शक्ल के होते हैं, और फिर उसको तीसरे वो भी फरिश्ते नजर आने लगते हैं जो किरामन कातिबीन और उसके साथ हिफाजत के फरिश्ते। इसीलिए आप देखते हैं कई लोग कहने लगते हैं यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, कोई कहते हैं मेरे बच्चे देख रहे हैं, कोई मुस्कुराने लगता है, अपने अपने अमल के मुताबिक। सोचिए ये अमल ही है, और पाओं से जान निकलने शुरू थी, इसलिए सबसे पहले पाँव ठंडे होते, फिर पिंडली से, फिर आगे आगे चढ़ते चढ़ते फिर हलक तक आती है, और फिर मौत, ये जो रूह है जो मुंह के रास्ते निकलती है, तो ये आखिर में एंड में मुंह तक आती है। उससे पहले पाँव से जान निकल जाती है, इंसान कहीं भाग नहीं सकता। और अगर वो कवि है तो फिर तो उस बोलता है कुछ, चीखता है या चिल्लाता है, और अगर बिल्कुल नहीं हो चुका तो फिर तो मुंह से भी कोई बात निकलती नहीं। अल्लाह हु अकबर। तो मौत की बहुत सख्ती है, मौत की बेहोशियां हैं, मौत की गमरातुल मौत, सकरातुल मौत, ये सख्तियां हैं। लेकिन हमें कभी किसी के बारे में ये नहीं गुमान करना चाहिए कि इसकी मौत तो बड़ी सख्त आई और इसकी मौत, हमें नहीं पता। इसलिए कि जैद बिन असलम अपने वाले से रिवायत करते हैं जब मोमिन के दर्जात में से कुछ बाकी रह जाता है, यानी अल्लाह ताला ने उसके दर्जे बहुत बुलंद करने हैं जन्नत में, लेकिन वो अपने दर्जे तक नहीं पहुंचा ना अपने अमल की वजह से, तो अल्लाह ताला उस पे दुनिया में मौत की सख्ती को बढ़ा देता है ताकि वो मौत की सख्ती से जब गुजरे तो उसके जन्नत में दर्जे बुलंद हो जाए। तो अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देना चाहता लेकिन मोमिन को वो आला दर्जे देना चाहता है। और कभी गुनाहों के कफारे के लिए कि गुनाह धुल जाए उसके, इब्ने हजर कहते मौत की सख्ती मर्तबे के कम होने पे दलालत नहीं करती कि ये इसका मर्तबा बहुत कम है, ये बड़ा गुनाहगार था, बल्कि मोमिन के लिए या तो उसकी नेकियों में इजाफा करती है या उसके गुनाहों का कफारा करती है। तो ये सोच लें कि गुनाहों से हमने यहाँ पे तोबा करनी है, या फिर ये जो हमने पीछे पढ़ा है ना पिछली सूरत में, इससे यहीं पे तौबा कर लेनी है, या फिर वो कहते हैं ना कि जिसको किसी को मना करते हैं बच्चे को नहीं हटता तो फिर एक थप्पड़ लगा लेते हैं, फिर थप्पड़ से भी नहीं हटता फिर और कोई सजा देते हैं। तो जो इंसान यहाँ पे ना बाज आया फिर यही है कि फिर मौत के बाद यहाँ तो कफारा देना पड़ेगा, अगर मौत के बाद भी नहीं देता तो फिर कब्र में देना पड़ेगा। तो कब्र में भी जो उसकी सख्ती होती है वो उसके गुनाहों का कफारा कर देती है, यानी आखरत में भी नहीं उसको सवाब मिलेगी, और नहीं तो फिर आखरत में तो भुगतनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो नहीं जा सकते आगे, अनलेस कि अल्लाह ताला माफ कर दे यहाँ पे और इंसान छोड़ दे, तौबा कर ले यहीं पे, माफी मांग ले अल्लाह ताला से, तो फिर है। वरना कहीं ना कहीं तो जाके भुगतना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। ये वो चीज थी कि जिससे इंसान कतराता है। हई नमा कुंतु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजी मुशय्यदा, तुम जहां कहीं हो तुम्हें मौत आके रहेगी, चाहे तुम किलो में घुस जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कुल्लू नफ्सिन ज़ाएकतुल मौत, इससे तुम बच नहीं सकते। तो इसी वजह से अपने आप को सही रखने के लिए कब्रिस्तान को भी विजिट करना चाहिए, ताकि इबरत हो आए, इबरत के लिए। हम सिर्फ उस वक्त जाते, कोई प्यारा है वो आप जी हम जा रहे हैं दुआ करने के लिए, अपनी इबरत कभी नहीं हासिल करने जाते। और कसरत से इस्तिग़फ़ार हम करते रहे और मौत का जिक्र करते रहे, ये लज्जतों को तोड़ती है। हम इसलिए नहीं जिक्र करना चाहते क्योंकि हम अपनी जो मजे है ना उनको नहीं किरकिरा करना चाहते, मजा नहीं खराब करना चाहते, वरना मजा क्या आएगा, किस चीज का मजा ही नहीं रहेगा अगर मौत का बहुत जिक्र किया। इसलिए मौत का जिक्र ना करो, क्योंकि हम वो ही करते रहना है जो हम करते रहे हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते गुनाहों को। उमर बिन अब्दुल अजीज एक दफा जनाजे के साथ तशरीफ ले गए, कब्रिस्तान में पहुंच के अलहदा एक जगह बैठ के कुछ सोचने लगे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इस जनाजे के साथ आए हैं, आप अलहदा बैठ गए। फरमाया, हाँ मुझे एक कंवर ने आवाज दी, देखिए वो कैसे इमेजिन करते थे ना, और मुझसे यूं कहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज तू मुझसे नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या करती हूँ। मैंने कहा तू जरूर बता। उसने कहा उनके कफन फाड़ देती हूँ, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, उनका सारा खून चूस लेती हूँ, उनका गोश्त खा लेती हूँ। अल्लाह, और बताऊँ आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ। अल्लाह अकबर, मैं बाजुओं को कंधों से अलग कर देती हूँ, मैं रानों को घुटनों से अलग कर देती हूँ, घुटनों को पिंडियों से अलग कर देती हूँ, पिंडियों को पाँव से जुदा कर देती। ये फरमा के उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और फरमाया, दुनिया का क्याम कितना थोड़ा है और इसका धोखा कितना ज्यादा है। इसमें जो इज्जत वाला है वो आखरत में जलील, और इसमें जो दौलत वाला है वो आखरत में फकीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा और इसका जिंदा बहुत जल्दी मर जाएगा। कितने आए और चले गए ना, कितने आए और चले गए, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जीने लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं। वाकई इसमें कितनी इबरत, इसका मुतवज्जे होना इंसान को धोखे में डाल देता है। हालांकि ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती, और बेवकूफ वो है जो इसके धोखे में आ जाए। कहाँ गए ना वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़े बड़े बाग लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, बहुत थोड़े दिन रह के सब कुछ छोड़ के चले गए। कोई अपनी सेहत से धोखे में पड़ा हुआ है कि सेहत ही है और बस अब जो मर्जी करता रहूं, कोई जवानी से धोखे में पड़ा हुआ है कि मेरी जवानी है, मेरे पास ताकत है, मैं जो मर्जी करूं, कोई अपने माल की कसरत की वजह से धोखे में आया हुआ है। अल्लाह अकबर, देख ले मट्टी ने जिस्मों का क्या हाल कर दिया। देखे जो मर चुके हैं इनके बदन को कैसे कीड़े उनके जोड़ों को और हड्डियों को कैसे खा रहे हैं। वो लोग भी तो दुनिया में थे ना, उनकी भी ख्वाहिशात थी, वो भी इन्हीं घरों में रहते थे, उनके भी आगे नौकर चाकर होंगे, उनके भी अजीज वकारिब होंगे। लेकिन अब क्या है, आवाज देके पूछ के तो देखें क्या गुजर रही है। गरीब अमीर सब एक मैदान में पड़े हैं, उनके मालदारों से पूछे, मिलियनर से पूछे माल ने क्या काम किया, और उनके फकीर से पूछे उसके फकर ने क्या नुकसान दिया। अल्लाह अकबर, उनकी जुबानें बहुत बोलती थी ना, उनकी ये नाजुक खालें थी, बहुत खूबसूरत जिस्म थे, खूबसूरत चेहरे थे, तो अब कहाँ है वो। मुझसे मेरे सामने किसी ने इस दफा बात की, वो किसी घर में काम करने वाली, तो मुझे कहने लगी बाजी वो जो मेरा शोहर जहाँ वहां पे दफन है उसी कब्रिस्तान में, वो जहाँ पे वो बेगम साहब वो एक जिस इनका बताया जिनका उनको मैं भी जानती हूँ, वो मिलियनेयर बिलियनेयर है, यानी इतना उनके पास माल के हद से ज्यादा, वो जिस कब्रिस्तान में है ना वहीं पे मेरा शोहर भी दफन है। तो मैं बस उसकी बात, वो तो बात क्या के बता रही थी कि भाई मैं वहां पे उनके लिए भी जाके दुआ करती हूँ, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गई, देखो ये उनके घर काम करती थी और ये उसको बेगम साहब कह रही है, वो बेगम साहब चली गई और ये इसका शोहर भी और वो बेगम साहब भी एक ही कब्रिस्तान में, दुनिया में स्टेटस का कितना फर्क, और वहां पे जाके सब एक मिट्टी में दफन है, किसी की गुर्बत ने उसको कोई नुकसान नहीं दिया और किसी के माल ने उसको कोई फायदा नहीं दे दिया, अब तो अमल ही है जो काम आएंगे। कुछ नसीब है ना वो लोग जो अपनी कब्रों में भी मजा कर रहे हैं, जिनकी कब्रें जन्नत के बाग बन गई, और बदनसीब है वो लोग जिन्होंने इस धोखे के घर कोई हमेशा याद रखा और इसी की ख्वाहिशात में पड़े रहे और इसी से उम्मीदें लगा के रखी और यही सोचा कि बस जाना तो है नहीं, जब जाना होगा तो देख ही जाएगी, तब जमा कर लेंगे जब जाना होगा। वो खुशकिस्मत है जिन्होंने अपने पहुंचने से पहले वहां पे सामान तैयार किया हुआ, और बदकिस्मत है जो इंतजार में ही रहते हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, इन्हीं चीजों ने तो हमें धोखे में डाल रखा है। अल्लाह अकबर, इंसान उन चीजों के साथ खुश हो रहा होता है इस दुनिया में जो फना होने वाली है, कितना बेवकूफ है ना, ख्वाब को हकीकत समझता है, ये ख्वाब ही तो है, सारा दिन गफलत में गुजर जाता है और रात सोने में गुजर जाती है, और मौत है कि वो सर पे खड़ी भी है, आज नहीं तो कल तो आ ही जानी है ना, और इंसान इस तरह दुनिया से जिंदगी गुजार के चला जाता है जैसे चौपाए जानवर, वो तो भी आते हैं खाते हैं और पीते हैं और घर बनाते हैं और चले जाते हैं, और इंसान इतनी अकल रख के भी यही कर रहा, तो देखो आ गई सकरातुल मौत, मौत की सख्ती हक लेके आ गई, काश इंसान को ये हक उस वक्त नजर आने लगे जब वो सही सलामत बैठा होता, जब वो डुबकियां खा रहा होता है ना, गोते खा रहा होता है मौत की बेहोशियों के साथ, तो फिर उसको समझ लग जाती है, अकल ठिकाने आ जाती है, वो तो बड़े बड़ों की आ जाती है। कहते ना कि दुनिया का ऐसा नशा है कि शराब के नशे से भी इंसान कभी तो निकल जाता है, लेकिन दुनिया के नशे से इंसान निकलता ही नहीं, ये नशा उस वक्त उतरता है जब मौत आती है, आज यकीन नहीं आता, आज कितना भी समझाएं तो समझ ही नहीं हमें आती, लेकिन वो जब कनेक्शन कटने लगता है ना तब समझ आ जाती है, जब यहां से कट के वहां जुड़ने लगता है। अल्लाह ताला हमें इसी दुनिया में नरमी के साथ, अल्लाह सख्ती के साथ नहीं, अल्लाह ताला को सीधा करना आता है लोगों को, वो जाए तो सख्ती से कर दे, तो अल्लाह ताला नरमी के साथ हमें हिदायत के रास्ते पे चला दे, हम उन लोगों में से हो जाए जिनको अल्लाह की मुलाकात का शौक हो और अल्लाह ताला उनसे मिलना चाहे, और जिसका सूरह वाकया में जिक्र आया कि उनके लिए रौह व रैहान हो, रौह बुकेज है जन्नत के, और जिनके लिए जन्नत की खुशबुएं आती हैं और जन्नत के कफन आते हैं, उसके बाद दुनिया में गुसल दिया जाता है उनके लिए तो पहले ही आ जाते, उनमें से अल्लाह ताला हमें करते हैं, जिनके लिए या ये तो नफ्सुल मुतमाइन्ना की सदा लगती है, अल्लाह ताला उनमें से हमें कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
بسم الله الرحمن الرحيم. المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور